प्रकृति परिणाम की विधाएं कारिका कारणम स्तव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात् अन्वयः अव्यक्तम त्रिगुणतः समुदयात् च प्रवर्तते प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात् परिणामतः सलिलवत् कारिकार्थ त्रिगुण के पृथक पृथक रूप से तथा समुदाय रूप से अव्यक्त प्रवृत्त होता है। प्रकृति परिणाम की द्वितीय विधा को स्पष्ट करते हैं। जल की भांति त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न आश्रय से अनेक रूपों में परिणत होता है। भाष्यम अतश्च अव्यक्तम प्रख्यातम कारणम अस्ति यस्मान् महदादि लिंगम प्रवर्तते त्रिगुणतः त्रिगुणात् सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रधानम तथा समुदयात् यथा गंगा स्रोतांसि त्रिणी रुद्धमूर्धनि पतितानि एकम श्रोतो जनयन्ति एवं त्रिगुणं व्यक्तमेव व्यक्तं जनयति यथा वा तन्तवः समुदिताः पटं जनयन्ति एवं व्यक्तं गुणसमुदयान् महदादि जनयतीति त्रिगुणतः समुदयाच्च व्यक्तं जगत् प्रवर्तते यस्मादेकस्मात् प्रधानाद् व्यक्तं तस्मादेक रूपेण भवितव्यं नैष दोषः परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात् एकस्मात् प्रधानात् त्रयो लोकाः समुत्पन्नास्तुल्यभावा न भवन्ति देवाः सुखेन युक्ताः मनुष्या दुखेन तिर्यश्चो मोहेन एकस्मात् प्रधानात् प्रवित्तं व्यक्तं प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात् परिणामतः सलिलवत् भवति प्रतिप्रतीति विप्सा। गुणानामाश्रयो गुणाश्रयस्तद्विशेषः तं गुणाश्रय विशेषं प्रतिनिधाय प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेष परिणामात् प्रवर्तते व्यक्तं यथा आकाशादेकरसं सलिलं पतितं नानारूपात् संश्लेषाद्भि विद्यते तत्तद्सान्तरैः एवमेकस्मात् प्रधानात् प्रवृत्ताश्रयो लोकानैकस्वभावा भवन्ति देवेषु सत्त्वमुत्कटं रजस्तमसि उदासीने तेन ते अन्यंत सुखिनः मनुष्येषु रजः उत्कटं भवति सत्त्वतमसि उदासीने तेन ते अन्यंत दुखिनः तिर्यक्षु तम उत्कटं भवति सत्त्वरजसि उदासीने तेन ते अत्यंत मूढाः। गौड़पादभाष्य का भावार्थ संपूर्ण जड़ात्मक जगत अव्यक्त प्रकृति से संचालित होता है। प्रकृति जगत की कर्तृ धरती है इसलिए उसे मूल कारण कहते हैं। गुण परिणामशील हैं अतः तद्रूपा प्रकृति भी परिणामशीला है। एतावता प्रकृति परिणाम व्यापारवती कही गई है। प्रस्तुत कारिका में प्रकृति की इसी कार्यकरण व्यापार पद्धति पर प्रकाश डाला जा रहा है। प्रकृति परिणाम की दो विधाएं कारिका में प्रयुक्त त्रिगुणतः पद का अर्थ त्रिगुणात् अर्थात त्रिगुणात्मक होने से है जिसमें सत्व रजस एवं तमस तीनों गुण विद्यमान हैं। उसे त्रिगुण कहते हैं। सत्व गुण रजोगुण एवं तमोगुण की साम्यावस्था प्रकृति है। साम्यावस्था के समय प्रकृति का सदृश परिणाम चलता है अर्थात न्यूनाधिक भाव से नहीं अपितु तुल्य शक्ति संपन्न तीनों गुण अपने अपने परिणत होते हुए प्रलय की स्थिति बनाए रखते हैं। इस प्रकार प्रलय काल में प्रकृति की सदृशात्मक परिणाम विधा स्वीकार की गई है। उत्पत्ति और प्रलय में परस्पर विरोध रहने से प्रकृति का जगत उत्पत्ति प्रयोजन सदृश परिणाम विधा से संभव नहीं होता है। अतः कारिका में प्रयुक्त समुदयात पद से प्रकृति की दूसरी विसदृश परिणाम विधा की ओर संकेत मिलता है। आचार्य गौड़पाद उक्त आशय को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हैं। उनका वक्तव्य है कि जिस प्रकार महादेव के मस्तक पर पंक्ति रूप से पृथक पृथक रूप से पतित गंगा जल की तीन धाराएं मिलकर एक महान स्रोत को उत्पन्न करती हैं अथवा असंख्य तंतु मिलकर पट का निर्माण करते हैं उसी प्रकार प्रकृति के तीनों गुण मिलकर अथवा प्रकृति अपने तीनों गुणों के समुदाय द्वारा एक व्यक्त को उत्पन्न करती है। यद्यपि महदादि भेद से प्रकृति के कार्य अनेक हैं तथापि व्यक्तत्व जाति सब में अनुगत रहने से उनका एकत्व विवक्षित है। यहाँ इतना अधिक जान लेना आवश्यक है कि प्रकृति के तीनों गुण मिलकर सृष्टि व्यापार में तभी प्रवृत्त होते हैं जब उनका साम्य परिणाम समाप्त हो जाता है। साम्य परिणाम के अभिभव पूर्वक विरूप परिणाम के आविर्भावात्मक क्षण से सृष्टि आरंभ होता है। सृष्टि काल में प्रत्येक गुण अन्य दो गुणों का अभिभव करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। गुणों का यह संक्षोभात्मक संग्राम इतना गुप्त रहता है कि तीनों गुण आपस में एक दूसरे की मलिनता को नहीं जान पाते हैं। गुणों में यह गुप्त युद्ध इसलिए रहता है कि प्रत्येक गुण को यह भलीभांति ज्ञात रहता है कि मैं इनमें उद्देश्य की पूर्ति में अकेला समर्थ नहीं हो पाऊंगा, मुझे अन्य दो गुणों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। उधर हताश अभिभूत हुए अन्य दो गुण भी उक्त दृष्टि बिंदु से विजित गुण को सहायता पहुंचाते ही हैं और अवसर पाकर स्वयं भी आगे बढ़ जाते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि संक्षुभित गुणों के समुदाय रूप से कथित प्रकृति का सृष्टि व्यापार उसकी विसदृश परिणाम विधा की ओर इंगित करता है। जगत की नाना रूपता का समर्थन। अब यह प्रश्न उठता है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति से व्यक्त संसार श्रेष्ठ होता है, ऐसा तुष्यतु दुर्जन न्याय से मान भी लिया जाए तो भी संसार को एक रूप होना चाहिए था, लेकिन वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। इस प्रश्न के समाधानार्थ कहते हैं, परिणामतः सलिलवत, कारण की एकता से जगत की नाना रूपता में कोई दोष नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक ही प्रधान से समुत्पन्न तीनों लोकों में परस्पर भेद रहता है। देवता सुख का अनुभव करते हैं, मनुष्य दुख से आक्रांत रहते हैं तथा तिर्यक पशु पक्षी आदि मोहग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। यह वैचित्र प्रकृति के गुणों की मात्रा में परिवर्तन होते रहने के कारण है। इस प्रकार एक एक गुण की प्रधानता से नाना रूपता को प्राप्त प्रकृति के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या आकाश से गिरी जल बिंदुएं समान आस्वाद वाली रहने पर भी नींबू आम जामुन अनार आदि के बीजों में प्रविष्ट होकर षड रसता को प्राप्त नहीं करती हैं? वे अवश्य रस वैचित्र्य की ग्रहण करती हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला है कि समयानुसार प्रत्येक गुण की प्रधानता रहने से प्रकृति श्रेष्ठ त्रिगुणात्मिका सृष्टि की नाना रूपता अत्यंत स्वाभाविक है। पुरुष की सिद्धि कारिका। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्य। अन्वयः, पुरुषः अस्ति संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्य इति पंच हेतुः। कारिकार्थ, संहत्यकारी बुद्ध्यादि पदार्थ स्वप्रयोजनकारी न होकर पर अर्थात अपने से भिन्न के लिए होने से पुरुष में सत्वादि त्रिगुण का अत्यंता भाव रहने से अधिष्ठेयों का अधिष्ठाता होने से भोग्यों का भोक्ता होने से तथा कैवल्य प्राप्त्यर्थ प्रवृत्त होने से जड़ भिन्न चेतन तत्व पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। भाष्यम एव मार्याद्वयेन प्रधान्यस्यास्तित्वमगम्यते इतश्वेतत्तरं पुरुषास्ति तत्व प्रतिपादनार्थमाह यदुक्तं व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् मोक्ष प्राप्यत इति तत्र व्यक्तादनन्तरं व्यक्तं पञ्चभिः कारणैरधिगतं व्यक्तवत् पुरुषोऽपि सूक्ष्मस्त स्यादुनानुमितास्तित्वं प्रतिक्रियते अस्ति पुरुषः कस्मात् संघात परार्थत्वात् यो अयं महदादि संघात सह पुरुषार्थ इत्यनुमीयते अचेतनत्वात् पर्यंकवत् यथा पर्यंक प्रत्येकं गात्रोत्पलपादपीठ तुली प्रच्छादन पटो पधान संघातः परार्थो न हि स्वार्थ पर्यंकस्य न हि कश्चिदपि गात्रोत्पलाद्यवय वानां परस्परं कृत्यम् अस्ति अतो अवगम्यते अस्ति पुरुषो यः पर्यंके शेते यस्यार्थ पर्यंकस् तत्परार्थम् इदं शरीरं पञ्चानां महाभूतानां संघातो वर्तते अस्ति पुरुषो यस्येदं भोग्यं शरीरं भोग्यमहदादि संघातरूपं समुत्पन्नमिति इतश्चात्मास्ति त्रिगुणादि विपर्ययात् यदुक्तं पूर्वस्यां मार्यायां त्रिगुणं विवेकी विषय इत्यादि तस्माद् विपर्ययात् यनोक्तं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् अधिष्ठानात् यथेह लङ्घनप्लवन धावनसमर्थैश्च युक्तो रथः सारथिनाधिष्ठितः प्रवर्तते। तथा आत्माधिष्ठानत् शरीरमिति तथा चोक्तं षष्ठी तंत्रे पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवर्तते। अतो अस्यात्मा भोक्तृभावात् यथा मधुराम्ल वर्णकटु तिक्त कषाय षड्सोपवृंहितस्य संयुक्तस्यान्यस्य साध्यते एवं महदादिलिङ्गस्य भोक्तृत्वाभावादस्ति स आत्मा यस्येदं भोग्यं शरीरमिति इतश्च कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च केवलस्य भावः कैवल्यं तन्मितं यतः सर्वो विद्वान् विद्वांस संसार संतानक्षयमिच्छति एवमेभिहेतुभिरस्त्यात्मा शरीरव्यतिरिक्तः। गौणपादभाष्य का भावार्थ दूसरी तीसरी तथा ग्यारहवीं कारिकाओं से हमें सांख्य सम्मत पुरुष तत्व की सूचना मिल चुकी है, लेकिन घट पट आदि की भांति पुरुष के न दिखलाई पड़ने से अर्थात उसका शश श्रृंग ग्राही ज्ञात न हो पाने से पुरुष विश्वासाई प्रतीत नहीं होता है। अव्यक्त प्रकृति की भांति पुरुष भी पुष्टिकरणार्थ अपेक्षित है। इस विचार को दृष्टिपथ में रखकर ही प्रकृति की सिद्धि से निवृत्ति हुई ईश्वर कृष्ण पुरुष की सिद्धि के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। कारिकाकार ने पुरुष की सिद्धि के लिए पांच हेतु उपन्यस्त किए हैं, वे इस प्रकार हैं। संघात परार्थत्वात्, संघात का सामान्यतः अर्थ समुदाय होता है। समुदाय जड़ चेतन किसी भी पदार्थ का हो सकता है। सांख्य शास्त्र में सत्व रजस तथा तमस के संघात रूप अव्यक्त महत आदि चतुर्विंशति जड़ पदार्थों के अर्थ में संघात शब्द परिभाषित हैं। एतावता यत्र यत्र संघातत्वं तत्र तत्र सुख दुख मोहात्मकत्वं सिद्धांत है कि संघातवान पदार्थ दूसरे के प्रयोजन के लिए होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि गृह में सुसज्जित शैया तथा उसकी प्रत्येक वस्तु बिछौना आसन उपधान रजाई आदि का अपने लिए या आपस में एक दूसरे के लिए कोई उपयोग नहीं रहता है। इन एकत्रित पदार्थ को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस घर में अवश्य कोई व्यक्ति रहता होगा जिसके लिए ये सब पदार्थ हैं। उपर्युक्त स्थूल दृष्टांत से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सांख्य सम्मत चतुर्विंशति प्रकृति महत आदि संघात वान जड़ पदार्थ भी अवश्यमेव किसी दूसरे के लिए है। जो पर है वही पुरुष है। स्पष्ट शब्दों में महदादि भोग्य तत्वों से पांच भौतिक शरीर की निर्मिति पुरुष के लिए ही हुई है। इस प्रकार मिलजुल कर कार्य करने वाले जड़ पदार्थ अपने से भिन्न पुरुष की सत्ता का अनुमान कराते हैं। त्रिगुणादि विपर्ययात पीछे व्यक्ता व्यक्त से पुरुष के पृथकीकरण में एक हेतु अत्रिगुणत्र दिया गया है, उसी का यहाँ उपपादन किया जा रहा है। संघातवान जड़ पदार्थों ने ही त्रिगुणता निहित है, अन्यत्र नहीं। जिसमें त्रिगुणत्वादि का अभाव रहता है वही जड़ वर्ग से भिन्न चेतन तत्व पुरुष है। यहाँ विचारणीय यह है कि तुष्य तुजु तुदुर्जन्याय से यदि पुरुष को स्वीकार न किया जाए तो महदादि जड़ पदार्थों का अस्तित्व व्यर्थ प्रतीत होता है, और यदि पुरुष को महदादि की भांति संघातवान त्रिगुणात्मक मान लिया जाए तो पुरुष अव्यक्त आदि संहत पदार्थों के उपभोग के लिए किसी ऐसे अपर दूसरे तत्व की कल्पना करनी पड़ेगी जो संहत न हो, क्योंकि संघत का व्यापार संघत के लिए नहीं देखा जाता। और यदि पक्षपातिनी युक्ति न रहने से उस अपर तत्व को भी संगत माना जाए तो उसके भी पर असंगत तत्व की कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार कल्पना का अंत न होने से अनवस्था दोष उपस्थित होगा। इस अनवस्था दोष से परित्राण पाने के लिए तत्वदर्शियों ने त्रिगुणात्मक जड़ वर्ग से भिन्न अत्रिगुण असंगत पुरुष तत्व की सत्ता स्वीकार की है। अधिष्ठानात् यद्यपि घट में जलाहरण सामर्थ्य निहित है तथापि वह पुरुष से अधिष्ठित होकर ही जल लाने की क्रिया को कर पाता है। अन्यथा नहीं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि त्रिगुणात्मक महदादि जड़ पदार्थ चेतन पुरुष से अधिष्ठित होकर ही पर प्रयोजनार्थ समर्थ होते हैं, अन्यथा क्रिया शून्य जड़ पदार्थों की क्या उपयोगिता। पुरुष शरीर रूपी रथ का सारथी है। गीता में कहा भी है, आत्मानं रथिनं विद्धि। जिस प्रकार लांघने कूदने दौड़ने आदि में समर्थ घोड़ों से युक्त रथ सारथी से सुनियंत्रित होकर ही सारथी को गंतव्य स्थान तक पहुँचाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार आत्मा से अधिष्ठित होकर ही शरीर की प्रवृत्ति होती है। एतावता अधिष्ठीयमान जड़ पदार्थों का अधिष्ठाता चेतन पुरुष सिद्ध होता है। षष्ठी तंत्रकार को भी पुरुष के अधिष्ठातृत्व का सिद्धांत मान्य है। भोक्तृभावात् पीछे व्यक्त एवं अव्यक्त पदार्थों के सामान्य धर्मों की चर्चा के प्रसंग में कथित विषयत्व धर्म के विषय में सूक्ष्मता से यदि विचार किया जाए तो हम पुरुष तत्व तक पहुँच सकते हैं। अर्थात किसका विषय? यह शंका पुरुष का विषय उत्तर से दूर हो जाता है। वस्तुतः विषय विषयी की तथा विषयी विषय की अपेक्षा रखता है, क्योंकि दोनों में विषय विषयी भाव संबंध है। विषय को भोग्य तथा विषयी को भोक्ता भी कहते हैं। इस प्रकार उनका भोक्तृभोग्य भाव संबंध भी सुनिश्चित होता है। विषय का भोक्ता तत्सजातीय दूसरा विषय नहीं हो सकता, क्योंकि एक विषय में दूसरे विषय का उपभोग करने के लिए अपेक्षित सामर्थ्य कहाँ। मधुरादि षडरस युक्त अन्न भले ही सड़कर विकार को प्राप्त हो जाए, परंतु पुरुष के अतिरिक्त और कोई जड़ पदार्थ उसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह प्रत्यक्ष दृष्टांत महदादि भोग्य पदार्थों के भोक्ता पुरुष की ओर इंगित करता है। कैवल्यार्थ प्रवृत्ति है। अचेतन घट को कभी भी इस भावना से उद्विग्न नहीं किया कि हे प्रभु, मुझे दुख से छुटकारा मिले। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का क्षेत्र उसके लिए कहाँ? यह क्षेत्र तो चेतन पदार्थ के लिए ही है। शरीरधारी की अंतः प्रतिष्ठित चेतन शक्ति ही दुख से मुक्ति पाने के लिए अकुलाती व्याकुल होती रहती है, तदर्थ वह प्रवृत्त भी होता है। फलस्वरूप भारतीय दर्शन का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार जड़ से भिन्न चेतन पदार्थ में ही कैवल्यार्थ प्रवृत्त रहने से पुरुष की सत्ता अनुमित होती है। एतावता उपर्युक्त पांच हेतुओं के द्वारा शरीरातिरिक्त पुरुष का अस्तित्व निर्णित हुआ। पुरुष बहुत्ववाद कारिका। जनन मरण करणानां प्रतिनियमाद युग पत प्रवित्तेश पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्यया चैव। अन्वयः पुरुष बहुत्वं सिद्धं जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् अयुगप प्रवित्तेश त्रैगुण्य विपर्यया चैव इति त्रय हेतोः। कारिकार्थ प्रत्येक शरीर में जन्म मरण एवं अंतः बाह्येन्द्रियों की पृथक पृथक व्यवस्था रहने से तत्तत् कार्यों के प्रति संसार के यच्च यावत प्राणियों की एक साथ प्रवृत्ति न होने से तथा प्रत्येक शरीरधारी में त्रैगुण की विलक्षणता दिखलाई पड़ने से पुरुष बहुत्ववाद सुस्थिर होता है। भाष्यम अथ सह किमेकः सर्व शरीरे धिष्ठाता मणि रसनात्मक सूत्रवत् आहो स्विद बहव आत्मानः प्रति शरीरम धिष्ठातार इति। अत्रोच्यते जन्म च मरणाश्च करणानि च जन्म मरण करणानि तेषां प्रतिनियमात् प्रत्येक नियमादित्यर्थ यद्येकम् एव आत्मा स्यात् तत् एकस्य जन्मनि सर्वम् एव जायरन् एकस्य मरणे सर्वे अपि म्रियेरन् एकस्य कर्णवैकल्ये बाधिर्यान्धत्व मूकत्व कुणित्व खञ्जत्व लक्षणे सर्वे अपि बधिरांध मूक कुड़ी खंजाह स्यु न चैवं भवति तस्मात् जन्म मरण करणानां प्रतिनियमात् सिद्धम् इतश्च। अयुगपत प्रवित्तेश युगपत एक कालम न युगपत अयुगपत प्रवर्तनम यस्माद युगपत धर्मादिषु प्रवित्तिर दृश्यते एके धर्मे प्रवित्ताः अन्ये धर्मे वैराग्ये अन्ये ज्ञाने अन्ये प्रवित्ताः तस्माद् अयुगपत प्रवित्तेश बहवः इति सिद्धम् किंचान्यत्रैगुण्य विपर्ययाचैव त्रिगुण भाव विपर्याच पुरुष बहुत्वम सिद्धम यथा सामान्य जन्मनि एकः सात्विकः सुखी अन्यो राजसो दुखी अन्यस्तामसो मोहवान एवं त्रैगुण्य विपर्याद बहुत्वम सिद्धमिति गौणपाद भाष्य का भावार्थ। गत कारिका में व्यक्ता व्यक्त से भिन्न पुरुष तत्व की स्थापना की गई, उसमें शरीर के अधिष्ठाता रूप से पुरुष वर्णित हुआ है। अब विचारणीय यह है कि जिस प्रकार मालागत सूत्र अनेक सूक्तिकाओं को सुनियंत्रित रखता है, क्या उसी प्रकार एक चेतन पुरुष प्रतीयमान असंख्य शरीरों का अधिष्ठाता है अथवा पुरुष के संबंध में दूसरी ही मान्यता है। प्रस्तुत कारिका में पुरुष बहुत्ववाद को संयुक्तिक सिद्ध करते हुए एक पुरुषवाद के प्रचारकों का खंडन किया जा रहा है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात पुरुष से अधिष्ठित असंख्य शरीरों एवं तद्गत शक्तियों का आविर्भाव एवं तिरोभाव शरीर पक्ष में मरण तथा इंद्रिय पक्ष में सामर्थ्य रहित्य भिन्न भिन्न काल में दिखाई पड़ता है। इधर जन्म का शुभ समाचार और उधर मरण की दुखद घटना व्यक्तियों को हर्षित एवं दुखित करती रहती है। एक में इंद्रिय संपन्नता और दूसरे में इंद्रिय विकलता दिखाई पड़ती है। इस विषमता के आधार पर सांख्य दार्शनिकों ने यह निश्चित किया है कि प्रति शरीर में पुरुष भिन्न भिन्न है। यदि सभी शरीर रूपी रथों का नियंत्रक एक पुरुष होता है तो सारथी से प्रेरित रथ के युगल अश्वों के एक साथ दौड़ने कूदने तथा रुकने की भांति जन्म मरण की क्रियाएं समस्त प्राणियों के लिए समान होती हैं। किसी एक का जन्म अथवा मरण नहीं होता, सब एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरते तथा सब में युगपत इंद्रिय वैकल्य व्याप्त होता है, लेकिन ऐसे देखने में नहीं आता है। कर्म के सिद्धांत पर आधारित जन्म मरणादि का अंतर प्राणियों में रहना अनिवार्य है। एतावता शरीर भेद से पुरुष का भेद अर्थात पुरुष का अनेकत्व निर्णित होता है। अयुग पद प्रवित्तेह युगपद पद का अर्थ एक साथ अर्थात तुल्य समय है, उसका अभाव अयुगपद है। ऐसा देखने में नहीं आता है कि संसार के यज्ञ यावत प्राणी एक एक कार्य के लिए युगपद प्रवृत्त होते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति कर्मानुष्ठान में रत दिखाई पड़ता है, दूसरा योग की कठोर क्रियाएं साध रहा होता है, तीसरा ज्ञान प्राप्ति में लगा रहता है और चौथा विषय भोग को ही प्रधान समझता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न शरीरों से भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होते देखकर यह अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक शरीर पृथक पृथक पुरुष से अधिष्ठित नियंत्रित रहता है। एतावता पुरुष बहुत्ववाद सिद्ध होता है। त्रैगुण्य विपर्ययात यहाँ विपर्यय पद का अर्थ अन्यथा भाव विचित्रता विलक्षणता आदि है। पुरुषाधिष्ठित प्रत्येक शरीर में यदि गुणों की मात्रा समान अनुपात में रहती है तो पुरुष के एकत्ववाद पर विचार किया भी जा सकता था, लेकिन स्थिति इससे भिन्न है। सुखी व्यक्तियों में सत्वगुण की अधिकता, दुखी व्यक्तियों में रजोगुण की बहुलता तथा मोहग्रस्त व्यक्तियों में तमोगुण की प्रचुरता रहती है। इस प्रकार प्राणियों में उपलब्ध गुण वैषम्य के आधार पर भी पुरुष बहुत्ववाद परिपुष्ट होता है। पुरुष के धर्म कारिका तस्माच विपर्यासात सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टत्वं कर्तृभावस्य अन्वयः तस्मात् विपर्यासात च अस्य पुरुषस्य साक्षित्वं कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टत्वं अकर्तृत्वभावः च सिद्धः भवति। कारिकार्थ जड़भूत व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों के त्रिगुणत्वादि नाना विध धर्म पुरुष में उपलब्ध न होने से पुरुष साक्षित्व केवलत्व कैवल्य मध्यस्थ अर्थत्व दृष्टत्व तथा अकर्तित्व स्वरूप का सिद्ध होता है। भाष्यम अकर्ता पुरुष इत्येतदुच्यते तस्माच्च विपर्यासात् तस्माच्च यथोक्त त्रैगुण्य विपर्यासात् द्विपर्यात् निर्गुणः पुरुषो विवेकी भोक्ते इत्यादि गुणानां पुरुषस्य यो विपर्यासास् उक्तस्तस्मात् सत्त्वरजस्तमःषु कर्तृभूतेषु साक्षित्वं सिद्धं पुरुषस्येति यो अयमधिकृतो बहुत्वं प्रति गुणा एव कर्तारः प्रवर्तन्ते साक्षी न प्रवर्तते नापि निर्वर्तत एव किञ्चान्यत् कैवल्यं केवल भावः कैवल्यं अन्यत्वमित्यर्थ त्रिगुणेभ्यः केवल अन्यः मध्यस्थ्यं मध्यस्थ भाव परिव्राजकवत् मध्यस्थः पुरुषः यथा कश्चित् परिव्राजको ग्रामीणेषु कर्षणार्थेषु प्रवृत्तेषु केवलो मध्यस्थः पुरुषो अप्येवं गुणेषु प्रवर्तमानेषु न प्रवर्तते तस्माद् द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च यस्मान् मध्यस्तस्मस्माद् द्रष्टा तस्माद् कर्ता पुरुषस्तेषां कर्मणामिति सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाः कर्मकर्तृभावेन प्रवर्तन्ते न पुरुषः एव पुरुषस्यास्तित्वं च सिद्धम्। गौणपाद भाष्य का भावार्थ। ग्यारहवीं कारिका द्वारा पुरुष में अनुपलब्ध धर्मों का निषेध मुखेन संकेत कर ईश्वर कृष्ण संप्रति व्यक्ता व्यक्त के धर्मों से तुलना करते हुए पुरुष का स्वरूप बतलाते हैं। साक्षित्व धर्म व्यक्ता व्यक्त में त्रिगुणत्व पुरुष में अत्रिगुणत्व व्यक्ता व्यक्त में अविवेकित्व पुरुष में विवेकित्व व्यक्ता व्यक्त में विषयत्व पुरुष में अविषयत्व व्यक्ता व्यक्त में सामान्यत्व पुरुष में असामान्यत्व व्यक्ता व्यक्त में जड़त्व पुरुष में अजड़त्व व्यक्ता व्यक्त में प्रसव धर्मित्व पुरुष में अप्रसव धर्मित्व धर्म है। इस प्रकार पुरुष में त्रैगुण्य आदि का विपर्यास रहने से वह साक्षित्व धर्म विशिष्ट सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि कर्तृत्व धर्म गुणों का ही है, वे ही प्रवृत्ति एवं निवृत्त होते हैं। अत्रिगुण पुरुष में कैसी कर्तृता, उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति दृष्टिगत नहीं होती है, वह तो गुणों के व्यापारों कार्यों का साक्षी मात्र है और स्वयं प्रकृति उसे अपने विषय दिखलाती है। इसलिए पुरुष को दर्शित विषय वाला भी कहा जाता है। वाचस्पति मिश्र अविषयत्व धर्म के कारण पुरुष में साक्षित्व धर्म अंगीकार करते हैं। केवलत्व धर्म केवलस्य भाव केवल्यम अर्थात पर पदार्थ के वास्तविक संपर्क से शून्य अतएव सर्वथा परिशुद्ध पदार्थ को ही केवल कहते हैं, जिसमें दूसरे की संगता नहीं रहती और उसका भाव कैवल्य कहलाता है। पुरुष का कैवल्य त्रिगुण रहित रहने से सिद्ध होता है और चूंकि त्रिगुणात्मक पदार्थ ही सुख दुख मोह स्वरूप होता है, इससे पुरुष का त्रिविध दुख राहित्य रूप कैवल्य भी संगत हो जाता है। मध्यस्थत्व धर्म पुरुष का अत्रिगुणत्व धर्म उसके मध्यस्थत्व धर्म का भी प्रत्यायक है, जिसमें त्रिगुणात्मक नहीं उसमें सुख दुख मोहकता कैसे रह सकती है। सुखी व्यक्ति में ही सुख ग्रहण के प्रति अभिनिवेश तथा दुखी व्यक्ति में ही दुख विनाश के प्रति जागरूकता दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार सुख दुख के से विनिर्मुक्त यथार्थ सन्यासी को सुख दुख व्याप्त नहीं करते, वह तो उदासीन भाव से राग द्वेष से रहित होकर ग्रामवासियों के क्रियाकलापों का अवलोकन मात्र करता है। इसी प्रकार स्वरूप से उदासीन पुरुष गुणों के प्रवृत्त होने पर स्वयं भी प्रवृत्त होता है, ऐसी बात नहीं। मध्यस्थ व्यक्ति में कैसी क्रियाशीलता, एतावता अत्रिगुण पुरुष में मध्यस्थता सिद्ध होती है। दृष्टत्व धर्म जिसमें साक्षित्व धर्म निहित है उसमें दृष्टत्व धर्म स्वतः सिद्ध है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अथवा दोनों एक रूप हैं। अकर्तित्व धर्म परिणामशील पदार्थों में ही कार्यकरण सामर्थ्य मानी गई है, जिसमें प्रसव धर्मिता ही नहीं उसमें कर्तृत्व धर्म कैसे रह सकता है। इस प्रकार परिणाम रूप क्रिया से शून्य पुरुष अकर्तृत्व धर्म का सिद्ध होता है। इस प्रकार पुरुष के धर्मों की व्याख्या की गई। पुरुष में कर्तृत्व व्यवहार गौण कारिका तस्मात् संयोगाद् चेतनम् चेतनावदिवलिंगम् गुणकर्तृत्वे अपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः अन्वय तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम् लिंगम् चेतनावत् इव भवति तथा गुणकर्तृत्वे अपि उदासीनः पुरुषः कर्ता इव भवति कारिकार्थ त्रिगुणात्मिका परिणामशीला बुद्धि के कर्तृ होने पर और अत्रिगुण अपरिणामी पुरुष के अकर्ता होने पर भी दोनों के असाधारण विलक्षण संयोग के फलस्वरूप जड़ बुद्धि चेतनवती प्रतीत होती है और कर्तृत्व धर्म त्रिगुणात्मक पदार्थों का होने पर भी उदासीन दृष्टा तथा साक्षी मात्र पुरुष कर्ता की तरह अवभासित होता है। भाष्यम यस्माद् कर्ता पुरुषस्तत् कथमध्यवसायं करोति धर्मं करिष्याम्य धर्मं न करिष्यामि त्यतः कर्ता भवति न च कर्ता पुरुषः एवं मुभया तथा दोषः स्यादिति अतः उच्यते यः पुरुषश्चेतनावान् तेन चेतना अवभाससंयुक्तं महदादिलिङ्गं चेतनावदिव भवति यथा लोके घटः शीतसंयुक्त शीतः उष्णसंयुक्त उष्णः एवं महदादिलिङ्गं तस्य संयोगात् पुरुष संयोगात चेतनावदिव भवति तस्माद् गुणा अध्यवसायं कुर्वन्ति न पुरुषः यद्यपि लोके पुरुषः कर्ता गन्तेत्यादि प्रयुज्यते तथाप्य कर्ता पुरुषः कथं गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः गुणानां कर्तृत्वे सति तथा उदासीनो अपि पुरुषः कर्तेत भवति न कर्ता अत्र दृष्टान्तो भवति यथा चौरश्चौरः सहगृहश्च चौर इत्यवगम्यते एवं त्रयो गुणाः कर्तारः तैः संयुक्तः पुरुषो अकर्ता अपि कर्ता भवति कर्तृसंयोगात् एवं व्यक्ताव्यक्तज्ञानां विभागो विख्यातः यद्विभागान् मोक्षप्राप्तिरिति गौड़पादभाषिका भावार्थ गत कारिका में पुष्टिकृत पुरुष के अकर्तृत्व की मान्यता लोक व्यवहार के विरुद्ध प्रतीत होती है। व्यवहार दशा में पुरुष धर्माधर्म के ग्रहण तथा त्याग का निश्चय करता हुआ दिखाई पड़ता है। यदि पुरुष धर्म का पालन तथा अधर्म का परित्याग करने में समर्थ न होता तो उसमें इस प्रकार की कर्तव्य बुद्धि कैसे दिखाई पड़ सकती थी। अतः पुरुष को कर्ता मानिए। प्रस्तुत कारिका द्वारा पुरुष में आपाततः प्रतीत होती हुई उक्त असंगतियों विरोधों का ही सामंजस्य किया जा रहा है। दैनिक जीवन में जिस प्रकार जल आदि शीतल पदार्थ से संयुक्त घट शीतल हो जाता है अथवा उष्ण पदार्थ के संपर्क से घट में उष्णता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप पुरुष से संयुक्त हुई जड़ बुद्धि तथा उससे संबंधित अन्य जड़ पदार्थ चेतनवती प्रतीत होती है। वस्तुत चेतनता उसका धर्म नहीं है, उसी प्रकार कर्तृत्व पुरुष का धर्म नहीं है। कर्तृत्व तो त्रिगुणात्मक जड़ पदार्थों का ही धर्म है, फिर भी अपने संपर्क से बुद्धि को प्रभावित करने वाला पुरुष स्वयं भी बुद्धि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। बुद्धि का कर्तृत्व धर्म पुरुष में प्रति संक्रमित होने से पुरुष कर्ता प्रतीत होता है। जिस प्रकार चोरों के साथ पकड़ा गया निर्दोषी व्यक्ति भी उसी वर्ग का समझ लिया जाता है, पुरुष में कर्तृत्व व्यवहार गौण है। अतः बुद्धि पुरुष के संयोग के कारण होने वाली आभासिक प्रतीतियों का विवेचन करने में असमर्थ जन समुदाय को सांख्य सम्मत पुरुष का अकर्तृत्ववाद लोक व्यवहार के विरुद्ध नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय कारिका के चतुर्थ करण व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात् में कथित व्यक्त अव्यक्त तथा ज्ञ पदार्थ के स्वरूप बोधार्थ तीसरी से लेकर बीसवीं तक की कारिका प्रस्तुत हुई है। प्रकृति पुरुष के संयोग का कारण